रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभुदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भगवान राम अपने महल के बगीचे में थे तब सनकादि ऋषि आए। भगवान की खूब स्तुति गाईर चले गए। यहां तक प्रसंग हो गया था। ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में क्यों जाते हैं कि वे ब्रह्मा जी को धन्यवाद देने जाते हैं। पिताजी से बार बार में, हे पिताजी आपने बड़ा अच्छा किया, सृष्टि बनाई, हमको भेजा, हमको भगवान के दर्शन हुए। ये अपने लोगों को बताने के लिए ऐसे नारद जी भी जाते हैं। माता पिता का खूब उपकार मानना चाहिए, सिखा रहे हैं, क्योंकि माता पिता ने हमारे शरीर को पाला पोसा बड़ा किया ताकि शरीर से आज हम भगवान की तरफ चलते हैं। इसलिए माता पिता का ऋण कोई नहीं उतार सकता। ब्रह्मा जी के पास इसीलिए गए, ब्रह्मा जी आप हमारे पिता हो, सृष्टि को बनाते हो, बड़ा अच्छा किया हमको बनाया, भगवान के दर्शन हो गए। सनकादिक चले गए। अब देखो वहां एक बड़ा सुंदर दृश्य बताते हैं कि उनके चले जाने के बाद सब भाइयों के मन में भगवान से कुछ पूछने की इच्छा हो रही है। और राम जी महाराज, देखो जो आदमी पूछने वाला होता है ना, उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा है कुछ पूछने वाला है। ऐसे ऐसे कोई करे ना, इसका मतलब पूछने वाला है। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाई, सब जो है पूछने में संकोच कर रहे हैं और क्या करते हैं, हनुमान जी की तरफ इशारा करते हैं। भगवान अंतर्यामी सब बात जान रहे हैं, लेकिन भाई लोग कितना भगवान का कायदा रखते हैं। तब हनुमान जी महाराज सब भाइयों की तरफ से हाथ जोड़ते हुए निवेदन करते हैं, हे दीनदयाल प्रभु, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं पर बड़ा संकोच हो रहा है, कैसे पूछे। अरे हनुमान, तुम ये क्या बात बोलते हो, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, तुम भरत को भी जानते हो, मेरे भरत में कोई अंतर नहीं है, क्या पूछना चाहते हैं भरत। भरत जी चरणों में सिर रख करके, महाराज शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, संदेह दृष्टि से मैं नहीं पूछ रहा हूं, ऐसे ही महाराज आपकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसमें मेरी कोई ढिठाई हो जाए तो अपना सेवक समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे भगवान, हम संतों की महिमा सुनना चाहते हैं। वेदों में पुराणों में तो बहुत प्रकार से गाया है, हम आपके श्रीमुख से साक्षात उन हाव भाव लहजा, वो आपका जो बताने का ढंग, उससे हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। संतों की महिमा, और संत और असंत का भेद जितना आप जानते हैं, हे प्रणतपाल, दूसरा कौन जानेगा, बताइए महाराज। अरे लख भाई भरत, संतों के लक्षण कैसे कहे, और फिर संत और असंत के बीच में भेद की बात, ये तो ऐसा ही समझो कि एक तो कुल्हाड़ी है और एक चंदन का वृक्ष है। चंदन को वृक्ष, चंदन का वृक्ष है, उसको कुल्हाड़ी काटती है, कट कट काटती है। थोड़ी देर बाद उस कुल्हाड़ी को सूंघो, सुगंध आती है। जिस कुल्हाड़ी ने चंदन के वृक्ष को काटा था, उस चंदन ने उस कुल्हाड़ी को सुगंधित दिया, अपने पास था वो दे दिया। इसीलिए भारत देखो, मंदिरों में जाओ तो लोग चंदन चढ़ाते, चंदन चंदन क्यों चढ़ाते हैं, कि चंदन जैसा कोई जो है ऐसा दूसरा उदाहरण मिलता नहीं है। संत स्वभाव को बताने वाला चंदन है। चंदन से शीतलता मिलती है, अनल दाय पीटत घन ही परसु बदन यह दंड। ये जो चंदन है, ये बड़े बड़े देवताओं के सिर पर चढ़ता है। और बताते हैं कि वो जो कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी को अग्नि में फिर तपाया जाता है। तपा करके और फिर उसको घन के द्वारा खूब पीटा जाता है। इसलिए कुल्हाड़ी को देखकर याद रखना, कुल्हाड़ी की धार ऐसी ही होगी, वो खूब जब उसको गर्म करेंगे फिर वहां खूब घन की मारते हैं, तब जाके धार बनती है। अनल दाह पीटत घन ही परसु बदन यह दंड, उसको यह दंड मिलता है। और जग बल्लभ श्रीखंड, चंद्रमा से ये चंदन से सब प्रेम करते हैं। संत पुरुष होते हैं वो विषयों में लंपट नहीं होते, विषयों में आसक्त नहीं होते। संत भी सुख दुख उठाते हैं, सुखी दुखी होते हैं। गीता में तो कहा कि सुखी दुखी नहीं होते, समुदुख सुख है स्वस्थ है, द्वंदे मुक्ता सुख दुख संगे। और यहां आप कैसे कह रहे हैं कि भाई होते हैं, संत भी सुखी होते हैं दुखी होते हैं। क्यों? पर देखो उनका दुख क्या है, दूसरे का दुख ही उनका अपना दुख होता है, दूसरे का सुख ही उनका सुख होता है। महाराज जी बताते थे कि भेड़ू में एक माई थी, बूढ़ी माई। महाराज जी के मैं बच्चा था उस समय की बात है, तो वो बूढ़ी माई थी, उस माई को कोई कह देता कि माँ, सारा गांव माई बोलता था उसे, एक एक आदमी माँ बोलता था। एक तो बूढ़ी थी, एक उसका स्वभाव है, किसी के घर में कोई मर जाए तो वो रोने लग जाती, चाहे किसी मेघवाल के घर में मरे और चाहे किसी ब्राह्मण के घर में मरे, किसी के भी घर में वो रोने, अरे बीरो धड़ी मर गयो, अरे राम राम, क्या दुख पाती होली बा, मेरी घराली कितनी रोती होली, बीर क्या काम चाली रोती। और हर व्यक्ति के घर में कोई काम पड़ता, शादी का विवाह का, कोई मर गया तो कोई उसके वहां जो है भोजन का, वो खुद जाती जा करके वो माई बैठ करके सब काम संभालती। ऐसा करो ऐसा करो, ये करो वो करो, सब माँ बोलते थे उसको, माँ है महाराज जी, हम भी उनको माँ बोलते थे। तो वो दूसरों के दुख में जो है दुखी रहती और दूसरे के सुख में सुखी होती। ऐसे जो पुरुष होते हैं वे पुरुष सुख और दुख में रहते हुए भी सुख दुख से ऊंचे रहते हैं। और जब मान बड़ाई की बात आती है तो दूसरों को मान देते हैं, संतों के लक्षण है। हे भरत, ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो दीनों पर दया करते हैं, जिनके अंदर न लोभ है न क्रोध है न हर्ष है न भय है न किसी प्रकार का कोई उनके अंदर छल छद्म है। कितना भी कुछ दुख आ जाए अपनी नीति से वे सिरकते नहीं है, जो सच्चाई है उसको पकड़े रखते हैं कि नहीं ये बात हम इसको नहीं छोड़ेंगे, और अपने मुंह से सोच समझ करके बोलते हैं, अपने द्वारा किसी को कड़वा बोलना नहीं चाहते हैं। इतना वाणी पर संयम होता है, कितनी बढ़िया बात है। देखो उनकी चाहे कोई निंदा करो चाहे कोई स्तुति करो, दोनों में सम रहते हैं। ये तो है सज्जनों का लक्षण। और भरत, अब दुष्टों का लक्षण सुनाता हूं। क्यों? इसलिए सुनाता हूं कि उनकी संगति कभी मत करना, क्योंकि उनकी संगति बड़ी दुखदायी है। जिमी कपिलई घालई हरहाई, हरहाई माने बुरी जाति की एक गाय होती है, उस गाय को यदि आप रख लोगे तो वो आपके बढ़िया जो गाय है उसको नष्ट कर देगी। आप यही समझो कि आपके पास में एक बहुत श्याणी गाय है और आप एक दूसरी गाय ले आए, वो उसको हरदम सिंगड़ा मारती रहती है, दुख देती रहती है। जिमी कपिलई घालई हरहाई, ऐसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो सदा दुख देते रहते हैं। तो कहते हैं दुष्ट व्यक्ति क्यों दुख देते हैं, ध्यान देना। दुख आ दुख वो देता है, ध्यान से सुनना। ऐसी ऐसी बातें है ना छिपी रह जाती है। दुख वो आदमी देता है जो स्वयं दुखी होता है। मैं आपको दुख देऊं तो आपका ये कर्तव्य होता है कि आप मुझे दुख नहीं देंगे, आप दया करेंगे कि भाई ये आदमी स्वयं दुखी है ना, तब मुझे दुख दे रहा है। मैं सुखी होऊंगा तो आपको दुख दे ही नहीं सकता। तो खलन हृदय अति ताप विशेषी, अति ताप और विशेषी। दुष्ट आदमियों के मन में संताप बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, बहुत दुखी रहते हैं वो। तो दुष्ट व्यक्ति के हृदय में जब ये संताप रहता है तब वो हमको दुख देता है। और दुख से क्या करता है कि जरई सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति देखी, हृदय में जलन होती है कि इनके पास पैसा क्यों, इनकी इज्जत क्यों, इनकी बड़ाई क्यों, वो इतना क्यों मानते हैं। किसी की निंदा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कोई गड़ा हुआ धन मिल गया, खुश होते हैं। अच्छा वो यहाँ कोई आदमी वो ना तो पहले ही जानता है, आज था पड़ी धन में तो पहले से ही जानता हूं। भाई भगवान हो क्या तुम? क्या नहीं जी, क्या बात का, वो ऐसा ही है। जहां कहू निंदा सुनई पराई, हर्षई मनहु परिनिधि पाई। और बैर अकारण सब काबू सो, सबसे बिना किसी कारण के बैर ठान ले। और जो कर हित अनहित ताहू सो, महाराज जी बोलते थे इस चौपाई की व्याख्या में कि जो हित करे मेरी तो खबर लेनी ही लेनी। आपने मेरा हित किया तो यदि मेरा दुष्ट स्वभाव है तो आपका सबसे पहले हित करूंगा मैं। आप ही का करूंगा, क्यों आपने मेरा हित किया ना, तो जो करे हित अनहित ता हुसु, जो हित करे उसकी अच्छी तरह से खबर लेनी। उनका लेन देन व्यवहार जो बोलना का सब झूठा ही झूठा, झूठे ही लेना झूठे ही देना झूठे ही भोजन झूठ चबेना। सेठ जी बोलते थे कि ऐसा क्या है ये झूठे ही लेना झूठे ही देना। फिर क्या कि देखो लेना देना का होता हर कोई बोलता है। सेठ जी ने कहा ये भी बात है, आजकल लोग क्या करते हैं पन्ना उलटने ना, रामायण एक सज्जन आए रामायण करे करे, अरे हमने कह रहे ऐसा मत कर भाई, तेरे पानी कटोरी दे देते हैं, क्या है रुपया भी गिनते हैं करके गिनते हैं, ऐसा करने से लक्ष्मी का अपमान होता है। लक्ष्मी का तो अपमान कर लेते हैं, ग्रंथों का भी अपमान कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि हमको सुख शांति मिले। तो झूठे ही लेना झूठे ही देने का मतलब है कि किसी व्यक्ति से लेन देन करते हैं तो उसमें लेने में भी कपट और देने में भी कपट। और भोजन है ना, ये भोजन का अर्थ झूठे ही भोजन झूठ चबेने का अर्थ बार बार चाय जैसे खा लेना है, देखना ही यूं खा लिया यूं हाथ धोया ही नहीं, ये हाथ जो ना जैसे ककड़ी है जैसे खीरा है यूं खाते खाते हाँ नहीं हाथ नहीं, मेरा हाथ में मुंह में थोड़ी हाथ गया था, ककड़ी को पकड़ रखा था। अरे हाथ झूठा है तुम्हारा, झूठा मान ही नहीं सकते। तो झूठे ही भोजन झूठ चबेना, माने हृदय में भी झूठापन, बाहर के व्यवहार में भी झूठापन, शरीर के द्वारा जो सामान्य व्यवहार अनिवार्य व्यवहार होता है उसमें भी झूठापन। बोले मधुर वचन जिमी मोरा, ऐसा मीठा बोलते हैं जैसे कोई मोरिया बोलता है, ऐसी मीठी मीठी बात। आओ साहब पधारो साहब, हंसेंगे बोलेंगे मीठे बोलेंगे, पर खाई महा अहि जिम खाई महा अहि हृदय कठोरा। मोर होता है ना मीठा तो बोलता है सब ठीक है, पर सांप को ना उन्हें पंजों से पकड़ लेता है, चौंस से उसको मार देता है। खाई महा अहि घोर कठोरा, हृदय कठोरा, दूसरों के साथ द्वेष करना, दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन के ऊपर कुदृष्टि रखना, दूसरे की निंदा करना, ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं। ये राक्षस लोग ही मनुष्य के रूप में ऐसे आते हैं। लोभ कोई ओढ़ लेते हैं, लोभ कोई बिछौना कर लेते हैं। तो ये क्या है, सेठ जी ने बताया लोभ को ओढ़ना और बिछौना क्या है कि उनसा उनका आदि छोटे से छोटे व्यवहार में भी अपना सुख देखना है। एक बार सत्संग चल रहा था टीबड़ी के, वहां महाराज जी भी विराजमान थे, सब बैठे, ठंडी हवा चली है, बहुत बढ़िया बातें चल रही थी सत्संग की। तो एक सज्जन ने कहा आज कितनी तो कितनी ठंडी हवा आवे। तो महाराज जी वहीं बैठे थे, महाराज जी ने कहा तुम्हारा हवा की तरफ ठंडी हवा की तरफ ध्यान कैसे चला गया। कहीं देखे अटके देर से गर्मी आती है ठंडी हवा है, बस यही बात है। हर क्रिया में सुख लोभ रहता है, लोभ ही ओढ़न लोभ ही डासन। किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो ऐसी लंबी लंबी सांस लेते हैं जैसे कोई इनको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया हो, श्वास नहीं जनो जूड़ी आई नींद सी का। किसी की बड़ाई सुन नहीं सकते, उत्कर्ष देख नहीं सकते, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मातु पिता गुरु विप्रनम आनई, माता पिता गुरु ब्राह्मण जो भी पूजनीय होते हैं सास ससुर आदि। देखो गुरु शब्द से यहां अर्थ होता है सास ससुर भी, जहां माता पिता के साथ में गुरु नाम दिया है, गुरु माने गुरुजन तो है ही, साथ में यहां विप्र और दे दिया, मात पिता गुरु विप्रन मानई का अर्थ है चाहे अपने माता पिता और चाहे अपने पति के माता पिता, उसमें सब आ गए। ये गुरुजन परिवार में सब बड़े पुरुष होते हैं, उनकी बात नहीं मानना ये दुष्टता का लक्षण होता है। और शास्त्रों की निंदा करते हैं, क्या है शास्त्रों में रखा है, सब झूठी बात है, ब्राह्मणों ने लिख दिया अपनी मर्जी से कि साहब श्राद्ध के अंदर ब्राह्मण को भोजन कराओ। क्यों साहब उसको क्यों भोजन कराओ, औरों को भूख नहीं लगती है क्या साहब, ये फालतू की बात है, लिख दी ब्राह्मणों ने। अरे लिख तो दी है, ब्राह्मण को श्राद्ध के भोजन पर कितना पश्चाताप करना पड़ता है, और ब्राह्मण के लिए लिखा है कि भाई श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। अब बताओ फिर ये ब्राह्मण के लिए लिखा नहीं करना चाहिए, दूसरों को कहा कि श्राद्ध में ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए, श्राद्ध में कभी साधुओं को भोजन नहीं कराना चाहिए, साधुओं को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए और साधु को भोजन करना नहीं चाहिए, श्राद्ध का भोजन शास्त्र निषिद्धाता है। तो जो है मात पिता गुरु विप्रन मानई, स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं और दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, सब तरह से नष्ट करने वाले होते हैं ऐसे दुष्ट व्यक्ति। देखो दुष्टों की यहां पर कुछ ज्यादा ही लिखा कहा है भगवान ने, संतों की महिमा कुछ कम कही है। और जो है वहां नारद जी महाराज ने अरण्य कांड में भगवान से पूछा कि संतों की महिमा बताओ, खूब विस्तार से बताइए। वहां असंतों के नहीं कि वहां भरत जी का प्रश्न है कि संत और संत का भेद बताओ। तो असंत का लक्षण ज्यादा करने का गोस्वामी जी महाराज का तात्पर्य यह है कि असंतपणे को हम त्याग दें तो संतपणा अपने आप आ जाएगा। हम लोगों ने समझ लिया कि गुणों को धारण करेंगे तो ठीक रहेगा, गुण बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं अवगुण का त्याग करोगे तो गुण अपने आप बढ़े, अपने आप पैदा होंगे। कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे पुरुष बहुत होंगे। फिर वापिस संतों की महिमा कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये सारे वेदों का शास्त्रों का सबका हम तुमको निर्णय करके बताते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम, सारे शास्त्र का वचन बोलते हैं। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों का सार है क्या कि परोपकार है पुण्याय, दूसरे का उपकार करो इससे तो आपका कल्याण होगा, और पापाय परपीडनम दूसरों को दुख दोगे इससे बढ़कर कोई निकृष्ट कर्म नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई नीचता नहीं है। ये सारे शास्त्रों का निर्णय करके आपको सुना रहा हूं। जो व्यक्ति दूसरों के साथ मोह बस पाप का व्यवहार करता है, स्वार्थ के अंदर पड़ा रहता है, वह व्यक्ति अपना लोक और परलोक दोनों ही नष्ट कर लेता है। सज्जन पुरुष वो होते हैं भरत जो मेरा भजन करते हैं, और संस्कृति दुख जाने, संसार में केवल दुख सदा, अरे इसमें तो केवल दुख है, जैसे सांप है ना, कितना कोमल होता है, कितना चिकना होता है, सांप जैसी चिकनी चमड़ी किसी की भी नहीं होती, किसी की भी, फिर वो रंग बिरंगा हो और हो बांडी जैसी हो, बांडी रंग बिरंगी, अरे बांडी है, अरे बांडी है, अरे बांडी है, ऐसे जैसे हम बांडी के अंदर गुण नहीं दिखता है, गुण इतना ही चिकनी तो चमड़ी होती है, और ऐसी मुलायम ऐसा आदमी बहुत शरीर पर चलता हुआ बड़ा गुदगुदा सा लगता है, लपेट रहा हूं शरीर चलता है, बहुत गुण है उसमें, नाचने लगता है, यूं सांप नाचते 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 ऋषिकेश में देखा यूं खड़ा हो गया सांप। केवल इतनी सी पूंछ थी, वो संगीत का इतना प्रेमी होता है उसके सामने, वो छबड़ी में से निकल करके बाहर आया और वो यूं करे तो वो जब बोलने वाला खड़ा पूंगी तक यूं होता गया, पूंगी तक बहुत विशाल कालिंदर नाग। तो संगीत में उसकी कितनी रुचि है, शरीर उसका कितना कोमल है, और यूं 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 ऐसे सिरता सिरता छोटी सी जगह में से वो पार हो जाए। गुण तो बहुत है, लेकिन एक अवगुण ऐसा आ गया कि जिसके कारण से उसको कोई हाथ नहीं लगा, उसमें जहर है, खा जाए जहर मर जाए। ऐसे ही संसार में हमको गुण दिखते हैं, वो सब कल्पित गुण है। कान से अरे शब्द बड़ा अच्छा जो है ये संगीत हो रहा है, बड़ा अच्छा रूप दिखाई दे रहा है, बड़ा अच्छा इत्र का सुगंध है, बड़ा अच्छा मीठा खाने को मिलता है, बड़ी कोमल कोमल त्वचा है। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जो विषय है ये दिखते तो अच्छे हैं, पर ये अंदर ये सांप के समान बड़े जहरीले हैं। सांप का तो समझ में आता है, संसार का समझ में नहीं आता। इतनी बार हमको समझाते हैं, वो कह रहे हैं भजई मोह संस्कृति दुख जाने। लोग मेरे को जानने का प्रयास कर रहे, मुझे मत जानो, मैं तुम्हारे जानने में नहीं आऊंगा। तो जानने में आएगा तो ये संसार ही आएगा, इसको जानने में भूल कर रहे हो, मेरे जानने में थोड़ी भूल है। देखो कोई भगवान को निराकार मानता है, कोई साकार मानता है, कोई गणेश जी को श्रेष्ठ मानता है, कोई राम जी को श्रेष्ठ मानता है, कोई गणेश जी को श्रेष्ठ मानता है, कोई कृष्ण भगवान को श्रेष्ठ मानता है, कोई किसी को श्रेष्ठ मानता है, कोई विष्णु को श्रेष्ठ मानता है। कोई कहता नहीं साहब हम तो राम से नहीं, हमारे तो राम 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 राम, एक राम रंकार राम है, वही सबसे बड़ा है और इससे बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो उसके सामने हाजिरी भरते हैं। अच्छा बाबा वो भी सही, भगवान के विषय में जो कुछ कहा जाएगा सब सही है, लेकिन संसार के विषय में जो कुछ कहा जाएगा सब सही नहीं है। क्योंकि संसार को जानो, उसमें जानने की ताकत है। देखो भगवान को जिन्होंने कहा है उन्होंने तो अपनी अनुभूति से कहा है, इसलिए जिसको जैसा अनुभव हुआ। लेकिन संसार को जब जाना तो सबने एक स्वर से कहा, एक स्वर से संसार असत है, संसार दुख देने वाला है। ये जानना है ना, ये सबका एक है, भगवान को एक रूप से नहीं जान सकते। इसलिए कहा सयाने पुरुष वो होते हैं भरत, तो मेरे तो भजन में लग रहे रहते हैं और संस्कृति दुख जाने। भजई मोहि संस्कृति दुख जाने, त्यागई कर्म शुभाशुभ दायक। वो ज्यादा कर्मों के अंदर कर्मों के पछड़े में पड़ते नहीं है, कर्म करते हैं परंतु उनमें फल की इच्छा नहीं रखते। क्योंकि फल की इच्छा रख के कर्म करेंगे तो या तो पुण्य होगा या पाप होगा, दो के अलावा तीसरी बात है नहीं, बांधे जाएंगे। चाहे हमको लोहे की सांकल से बांध दो और चाहे हमको सोने की सांकल से बांध दो, बंधन तो वो का वो ही है। इस प्रकार से मैंने तुमको संत और असंत का लक्षण सुनाया है, तो संत और असंत के लक्षण को सुन करके इनको अलग अलग समझ करके मेरा भजन करना चाहिए। सबसे बढ़िया बात बताऊं भरत, कि संतों के तो गुण देखते हो और दुष्टों में अवगुण देखते हो, ये दोनों ही छोड़ो। गुण ये उभय न देखिए तो क्या करे, देखिए सो अविवेक, ये सब मायाकृत है, अपने तो मेरे भजन में मेरे प्रेम में लग जाओ, बस ये एक ही बात ध्यान में रखो। सबको ये बात बहुत अच्छी लगी, बड़े मस्त हो गए सब। भगवान फिर अपने महल में आ गए। ऐसे ऐसे चरित्र भगवान के होते ही रहते थे। नारद जी महाराज बार बार आते हैं, राम जी के चरित्र है वो गाते हैं, और नित नव चरित्र देख ही मुनि जाही, हर बार उनको चरित्र नया दे। अब यहां आकर के चरित्र देखते हो नारद जी, आप कभी वनवास में तो नहीं आए भगवान से मिलने के लिए, आप पंचवटी तो नहीं आए, भगवान जो है वहां लड़ रहे थे रावण से तो एक दो बार नारद जी आए बस, ऊपर ही बादलों के पीछे छिपे रहे, वहां तो नहीं आए। यहां बार बार नारद मुनि आ वही और भगवान के चरित्र देखते, तो अब तो कोई लीला ही नहीं है भगवान के चरित्र की। यहां भगवान का उपदेश सुनना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की स्तुति करना, ये नारद जी का काम था। और यहां सब भगवान से बातचीत करके फिर ब्रह्म लोक में जाते थे और ब्रह्मा जी को सुनाते थे। सुनी वीरांची अतिशय सुख मानी, बहुत आनंद आता था ब्रह्मा जी को भी। ऐसे सनकादिक नारद आदि ये सब के सब ब्रह्म निरत ऋषि मुनि ब्रह्मा जी को सुनाते थे। तो उस समय में ब्रह्मा जी की समाधि, सुनि गुण गान समाधि विसारी, ब्रह्मा जी को अच्छा लगता और खुद को भी, उनको इतना भगवान का अच्छा चरित्र लगता नारद जी को सनकादि को कि वे समाधि अमाधि छोड़ते और भगवान की पावन लीलाओं में प्रवेश करते हैं। देखो लीलाओं में प्रवेश करना क्या, लीलाओं से ध्यान करते हैं। भगवान माखन चोर की लीला कर रहे हैं, ये देखो मेरे हृदय में कर रहे, सच्ची लीला हो रही है। ये देखो भगवान ये मटकी को फोड़ दिए, मक्खन मुंह में लगा लिया, भगवान भगने लगे, ओहो मैं भी साथ में ही। वैसे ऐसे ऐसे भगत लोग ध्यान करते हैं, हर लीला में अपने को साथ में रखते हुए चलते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाखान पाषाण। उनका हृदय पाषाण के समान है, जिनके हृदय में भगवान की कथा का प्रेम नहीं, कथा के प्रति प्रेम नहीं है, उनका हृदय नहीं, पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर का। अरे नारद जी जैसे, सनकादि जैसे जीवन मुक्त महापुरुष जो ब्रह्म परायण है, वे भी ब्रह्म, सब छोड़ो ब्रह्म जी की, ब्रह्मा के ब्रह्म क्या है छोड़ो, भगवान का चरित्र सुना हुई चरित्र। ऋषिकेश की एक बात सुनी, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौदार प्रवचन के लिए बैठे, खूब से प्रश्न हुए, तो भाई जी होकर के, तो पास में शरणानंद जी महाराज बैठे हुए थे सूरदास ने, क्या भाई जी बोल नहीं रहे। तो कहा कि महाराज कुछ प्रश्न आए हैं, मैं उन अजी छोड़िए, अजी छोड़िए इन प्रश्नों को, तो मैं एक वाक्य में सबका जवाब दे दूंगा। आप तो कोई भगवान की बढ़िया कोई लीला सुनाओ होंगे, भक्ति की लीला सुनाओ, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं एक वाक्य में दे दूंगा इनको, आप तो भगवान की लीला सुनाओ। भाई जी ने कहा बाबा का हुक्म हो गया भाई, अब भगवान की लीला में चलते हैं। ऐसे सुनते सुनते क्या, तो भाई जी जैसे तो सुनाने वाले, शरणानंद जी महाराज जैसे सुनने वाले, भाई जी जैसे सुनाने वाले। भाई जी भी भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते तो कई दिन तक उन लीलाओं में ही रहते थे मस्त अपने, उनको चेत नहीं होता था कई दिनों तक। फिर उनके पत्र भरे रहते इतने सारे, फिर भाई जी लिखते, आजकल थोड़ा मगज खराब हो रहा है इसलिए आपका समय पर पत्र नहीं दे सका, उत्तर नहीं दे सका, आजकल दिमाग ठीक नहीं रहता है। वो दिमाग उनका कोई पागल थोड़ी था भाई, दिमाग पागल नहीं था, वो बस अपने को छिपा के रखते थे और वो भगवान की लीला में खो जाया करते थे। इसलिए भाई जी के कई एक दो चित्र ऐसे भी हैं कि कलम पड़ी है और कापी पड़ी है, जो भाव आया उनको ये पता नहीं कि ये भाव मैंने लिखे हैं क्या, ऐसे ऐसे भी प्रसंग सुने। तो सुनी गुण गान समाधि बिसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। भगवान के चरित्रों को सुनने में इतना आनंद का अनुभव होता है। एक बार भगवान ने अपने अयोध्या में रहने वाले सब लोगों को बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज भी आए, नगर के और भी ब्राह्मण लोग आए और दूसरे लोग भी आए, सब आए, सबका बड़ों का सम्मान किया भगवान ने। फिर भगवान ने सारी प्रजा को सुनाते हुए कहा कि हे अयोध्या वासियों, मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। कोई ममता के भाव से या और किसी भाव से मैं नहीं कह रहा हूं। यदि मेरी वाणी में कोई अनीति की बात दिख आए तो आप मुझे मना कर देना, कह दे साहब ये अनीति की बात बोलते हो, कोई मन में भय मत लाना। मेरे विचार से नहीं आती, नहीं अनीति, नहीं कछु प्रभुता ही। मैं राजा हूं इसलिए आपको कुछ मैं प्रभुता पूर्वक कहूं, ये भी मेरे मन में बात नहीं है। पर ये निकल जाए कोई बात तो मोई बरजऊ भय बिसराई। तो महाराज सुनाइए सुनाइए। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मानव शरीर में हैं। इस बात का गौरव होना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। हे पूर्वासियों, ये मानव शरीर देवताओं को नहीं मिलता। मानव शरीर क्यों दुर्लभ है महाराज? कि इसमें साधन होता है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन केवल मानव शरीर में होता है। और जो व्यक्ति इस साधन धाम मोक्ष कर द्वारा शरीर को प्राप्त करके जो न तो मुक्ति को प्राप्त करता, न मोक्ष को प्राप्त करता, न परलोक को ही अच्छा बनाता, सो परत्र दुख पावई। बहुत दुख पाना पड़ेगा। फिर कहेगा अरे समय निकल गया। देखो साधक होते हैं ना, जिनको परमात्मा की तरफ लगन लगती है, वो बीते हुए समय को लेकर बहुत रोते हैं कि अरे समय बीत गया, हमारा समय बीत गया, यूं ही चला गया। ऐसे ऐसे संत भी हुए जो खूब रोते थे, बैठे बैठे रोते थे कि महाराज रोते क्यों, ये क्या करें, जिंदगी चली गई, अरे राम राम राम, खूब रोते थे। महाराज जी रात्रि में उठे कि महाराज रो रहे हो, क्या बात है, और ज्यादा रोए, अरे क्या बात हुई बताओ, से पेट दुखता है कि कोई सिर दुखता है कि क्या बात है, ऐसे रात्रि में बैठे बैठे जोर जोर सिसकियां मार के रो रहे हो, बात क्या हुई? कहने मेरे पर फौजदारी मुकदमा हो गया। फौजदारी मुकदमा हो गया कोई मुकदमा, आपके साथ हो कोई फौजदारी मुकदमा, तो कोई लड़ाई झगड़ा होता वो फौजदारी मुकदमा हो गया। पहले तो महाराज जी भी नहीं समझे ऐसा क्या हुआ साहब, ये क्या करें, इतना समय तो मेरा बेकार चला गया, अब हमारा इतना समय तो बेकार चला गया और मृत्यु दौड़ी दौड़ी आ रही है, भजन मेरे से हुआ नहीं, क्या करूं, मेरी दशा क्या होगी, घबरा करके रोने लगे वो। और बहुत अच्छे संत थे वो, बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने मृत्यु से पहले ही कह दिया था कि मैं मरूंगा तब स्वामी जी महाराज की गोद में तो मेरा सिर रहेगा, भाई जी मेरे सामने खड़े रहेंगे, उनको देखते देखते मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा मैं। और वही स्थिति हुई अस्तु। तो जब भजन साधन में आदमी लगता है तब इस शरीर के गए हुए समय के लिए उसके मन में बड़ी तड़फड़ा रही, समय निकल गया मेरा, यूं ही निकल गया। लेकिन आगे जाने पर तो उसको और ही पश्चाताप करना पड़ेगा कि अरे काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगा है। हे पूर्ववासियों, ये शरीर केवल विषय भोग के लिए मिला हो ऐसी बात नहीं। यदि ऐसा ही होता, विषय भोग के लिए होता, सुख दुख भोगने के लिए होता, तो सुख के लिए स्वर्ग बना हुआ है। स्वर्ग क्यों बनाया? सुख भोगने के लिए। और मानव शरीर में हम क्या चाहते हैं? सुख भोगना। कैसे कैसे होगा? सुख भोगना है उसके लिए स्वर्ग बनाया है। परंतु स्वर्ग में गए हुए लोग भी थोड़ा सा ही सुख पाते हैं, अंत दुखदायी। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। जो व्यक्ति इस मानव शरीर में सुख भोगने के अंदर लगा हुआ है वो अमृत के बदले में जहर खा रहा है। वो जो है गुंजा मणि चिरमियों के बदले में पारस को फेंक रहा है। चिरमी मिली पारस ले लो रे, चिरमी हमको दे दो। गुंजा ग्रह ही और परस मणि खोई, परस मणि को पारस मणि को खो देता है। ऐसे ही संसार के भोग पदार्थ हैं, ये तो है चिरमी के समान, और मानव शरीर का जो समय है और प्रवाह है वो लगे तो मणि के समान। 84 लाख योनियों में भटकते 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 इस प्राणी को भगवान ने जो है ये मानव शरीर दिया है। कब हु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ऐसा ये आपको मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जो आदमी अपना कल्याण नहीं करता वो आत्महत्या करता है। इसलिए चाहे भक्ति से चलो और चाहे ज्ञान से चलो, ज्ञान के मार्ग में थोड़ी विघ्न बाधाएं ज्यादा आती है और भक्ति होती है वो सुगमता से कल्याण कर देती है। क्यों महाराज? देखो, ज्ञान के अंदर स्वयं का वैराग्य चाहिए और भक्ति के अंदर भगवान का बल काम करता है। तो ज्ञान में भगवान की, ज्ञान वाला भगवान की, भगवान का सहारा चाहता नहीं है वो, और भक्ति वाला बिना सहारे एक क्षण भी सिरकता नहीं है। तो महाराज, भक्ति से हम कल्याण करें तो भक्ति कहां मिलेगी? कि भाई, भक्ति कोई बाजार में नहीं मिलती, भक्ति की खेती भी नहीं होती। भक्ति तो कहां लेवे महाराज? संतों का जहां संग करोगे वहां भक्ति मिलेगी। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावै प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। सत्संग के द्वारा संसार का नाश होता है। और आपको एक बात बताऊं, गुप्त बात बताता हूं, भगवान शंकर के भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं मिल सकती। ये एक निष्ठा की बात बोल रहे हैं भगवान, एक निष्ठा की बात। दूसरी बात बताते हैं कि भक्ति के अंदर कोई प्रयास नहीं है। भक्ति के लिए क्या करना चाहिए? अपने मन में सरलता रखो, एकदम सरलता। महाराज जी कहा करते थे, मन में कोई बुरी बात आवे तो सिर हिला देना, जिंदा ना ऐसा कर देना, वो खत्म हो जाएगी। बहुत सरल उपाय बताया था। उस आदमी को दो बात सुनाऊं ऐसे मन में आए? ना, नहीं सुना ना। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। किसी से लड़ाई झगड़ा बैर विग्रह कुछ नहीं करना। भक्ति पक्ष हट, भगवान ने कह दिया हट पूर्वक भी आप भक्ति का पक्ष ले, इसमें कोई शटता नहीं है, कोई दुष्टता नहीं है। दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। यहां हट का मर्तव है एक निष्ठा, भक्ति में एक निष्ठ हो जाओ। भगवान के ये वचन सुनकर के नगरवासी बड़े खुश होने कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे माई बाप हो, जननी जनक, गुरु बंधु हमारे। क्यों? क्योंकि महाराज देखो, माता पिता गुरु दूसरे जितने भी संबंधी है ना, इन सब में कुछ न कुछ लौकिक स्वार्थ रहता है। पर हेतु रहित जगजुग उपकारी, बिना हेतु के उपकार करने वाले तो आप और आपके प्यारे भक्तजन होते हैं। इसलिए महाराज, आपके वचन हमने स्वीकार कर लिए। इस आनंद के आनंदमय भाव को लेकर, प्रेम रस को लेकर के सब अपने अपने घरों में चले गए और वहां जाकर बड़े आनंद में रहने लगे कि देखो, हमारे महाराज राम ने कितनी बढ़िया हमको शिक्षा कही है। बरनत प्रभु बत कही सुहाई, भगवान की बातों का विचार विमर्श करने लगे। उससे क्या है, सत्संग की बातों का विचार विमर्श करते तो अंदर में वो बात बैठती है। हे पार्वती, अयोध्या वासियों को ऐसा राजा फिर कभी नहीं मिल सकता। ब्रह्म सच्चिदानंदमय भगवान रघुनायक जहां राजा बनकर के विराजमान हूं, ऐसे अयोध्या वासियों के सौभाग्य की मैं क्या महिमा कह सकता हूं। सब लोग अपने अपने महल में पधार गए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
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 जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
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 सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाली की उमापति महादेव की
जय,
पवन सुत हनुमान की
जय,
अनंत कोटि सर्व संत महात्मा
की जय,
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय,
भक्तवत्सल भगवान की
जय,
आनंद कंद भगवान की
जय,
सच्चिदानंद भगवान की
जय।